जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्म पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथ मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है आराम की चाह रूह की लाचारी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा के याद में स्वयं को गढ़ता योग विनि से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
Om Shanti. I write not the pain in my heart. Each day a darkness covereth mine faith, its shadow in my core, a thought wild that sweepeth over me, each moment that killeth mine reason, soundeth still within me. I sing not the music of toll in me, ever that floweth in mine soul, spilleth out through my song, a force vehement throweth my mind into the blatant sea of restlessness. Then my peace I lose, my serenity falleth. The assaults of solitude, the onslaughts of silence, torture my meek, unregenerate spirit, drawing forth blood of my harmless cry. Vyakulta, Bechaini. क्यों ये बेचैनी और क्यों ये व्याकुलता है पता नहीं। ये कविता हमने जब 17 वर्ष के थे तब लिखी थी। आई राइट नॉट द पेन इन माई हार्ट, मैं कुछ नहीं लिखता, हृदय में पीड़ा है। हर दिन एक अंधकार मेरी आस्था को ढक लेता है, उसकी परछाई मेरे अंतर में बस जाती है। एक उग्र विचार जो मुझे घेर लेता है, हर पल मेरी बुद्धि को, विवेक को नष्ट करता है। अब भी मेरे भीतर उसकी गूंज बनी हुई है, मैं गाता नहीं, शोक की धुन मेरे भीतर है जो मेरी आत्मा को आत्मा में निरंतर बहती है और गीतों के माध्यम से बाहर निकलती है। एक तीव्र शक्ति मेरे मन को उछाल देती है, व्याकुलता के प्रचंड समुद्र में फेंक देती है। तब मेरी शांति खो जाती है, मेरी स्थिरता निस्तब्धता ढह जाती है। एकांत के आक्रमण और मौन के प्रहार टॉर्चर माई मीक अनरिजनरेट स्पिरिट, मेरी कोमल अप्रशिक्षित आत्मा को यातना देती है। Drawing forth blood of my harmless cry, मेरी निर्दोष पुकार का रक्त तक खींच लेती है। क्यों ये बेचैनी उस समय थी पता नहीं, पर एक कारण था, संसार और संसार में होने वाली घटनाएं, संसार और संसार के लोगों को देखते हुए। चारों तरफ दुख, चारों तरफ पीड़ा, चारों तरफ दर्द। और जब संसार के ऐसे वातावरण में हम जीते हैं, पलते हैं, रहते हैं, तो उस दर्द की टीस गूंज भीतर भी चली जाती है। बाहर का वातावरण हमें प्रभावित करता है। आज सुबह 2 बजे से 3 बजे तक हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के युगल 2 बजे हॉस्पिटल में लाए, परंतु घर पर ही डेथ हो गई थी। कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, 57 उनकी उम्र थी और बहुत ही खुश मिजाज, जब भी मिलते थे बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलकर, एक हल्कापन। कल पूरा दिन उन्होंने काम किया, यहाँ वहाँ गए, रात में खुद भोजन बनाया और जल्दी सो गए। एक ही बेटा है उसके साथ और 2:45 बजे उनको कुछ हुआ और गिर गए। जब लेके आए तो कुछ नहीं था, फिर भी हम लोग 1.5 घंटा तक सब कुछ करते रहे। परंतु वो जो सडन कोलैप्स उस बहन का, कि अब मैं कहाँ जाऊं, दर्द और पीड़ा बहुत डीप, जब जीवन का कोई एकमात्र सहारा हो और वही चला जाए अचानक, तो गहरा दुख, गहरी पीड़ा से आत्मा को गुजरना होता है। सारे इमोशंस संग्रहित हो जाते हैं। संसार जीवन और मृत्यु का खेल, निरंतर यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। जब तक वो हमसे संबंधित नहीं है, हमें लगता है हम सुरक्षित हैं, परंतु जैसे ही कोई हमसे संबंधित है, हमारा कोई प्रियजन, पति या पत्नी, बेटा या बेटी, माँ या बाप, मित्र, कोई संबंधी, कोई प्रिय, जैसे ही कुछ अहित उसके साथ होता है, आत्मा हिल जाती है, सारी तपस्या का लक्ष्य उस स्थिरता को प्राप्त करना है। जितना शरीर से हम दूर रहने का अभ्यास करेंगे, जितना शरीर से उपराम रहने का अभ्यास करेंगे, उतना अप्रभावित रहेंगे। हम सोच रहे थे ये जो कविता लिखी थी ये क्यों लिखी, अचानक सुबह विचार आया कि उस समय हम कुछ पढ़ रहे थे, शायद वो दर्द उस समय भीतर चला गया था। 18th century में विदेश में तीन कवि थे, ईबी शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। जॉन कीट्स की मृत्यु 25 वर्ष की उम्र में हो गई। उसके एक साल बाद परसी बीसी शेली चला गया, उसकी उम्र 29। उसके अगले एक साल के बाद लॉर्ड बायरन चला गया, एज 36। ये तीनों ही इंग्लिश पोएट्री के, क्या कहे, द ग्रेटेस्ट पोएट्स। जब जॉन कीट चला गया था 25 वर्ष की उम्र में, और शेली को पता चला, एक बहुत बहुत लंबी कविता 495 लाइंस की एडोनेस शेली ने लिखी थी। हम फर्स्ट ईयर में थे, अभी अभी एडमिशन हुई थी, 16 ईयर 17 ईयर, तब वो पढ़ रहे थे एडोनाइस। आई वीप फॉर एडोनाइस, ही इज डेड। ओ वीप फॉर एडोनाइस, डो आवर टीयर्स थॉ नॉट द फ्रोस्ट विच बाइंड सो डियर अहेड। अपने दोस्त के लिए वो एक लंबी सी कविता लिखता है, उसमें इतने भाव है मनुष्य स्वभाव के। जो हम पढ़ते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमें प्रभावित करता है। एक्साइटमेंट का वातावरण है तो भीतर एक्साइटमेंट जाती है, दर्द का वातावरण है तो दर्द भी अंदर प्रवेश कर जाता है। बेचैनी बेचैनी है सब तरफ तो अंदर बेचैनी जाती है। एक्साइटमेंट है तो वो टेम्पररी एक्साइटमेंट भीतर चली जाती है। हम सोच रहे थे कितनी तपस्या की आवश्यकता है उस स्थिति को प्राप्त करना है, जहां पे हम अकंप बने रहे, वन अनमूविंग सेंटर इन दिस मूविंग वर्ल्ड। नहीं तो दुख 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 भीतर प्रवेश कर जाता है। द म्यूजिक ऑफ डोल इन मी, इवन दैट फ्लोएथ इन माइंड सोल, स्पिलेथ आउट थ्रू माई सॉन्ग, अ फोर्स वेहेमेंट थ्रोएथ माई माइंड इन द ब्लड एंड सी ऑफ रेस्टलेसनेस। फिर उस समय तो एकांत और मौन भी क्या लगते हैं, द असॉल्ट ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत का भी जैसे आक्रमण हो रहा है, द ऑनस्लॉट ऑफ साइलेंस, मौन भी जैसे प्रहार कर रहा है और आत्मा से खून निकल रहा है। टॉर्चर माय मीक अनरिजनरेट स्पिरिट, सभी अस्थिरताओं के बीच स्थिर रहना। अडोल रहना, क्योंकि यह संसार का खेल ही ऐसा बना है कि जो नीचे के तल पर जीता है वो निरंतर दुखी होते रहता है। वह अवस्था निर्मोह की, अंतिम अवस्था है जिसका अभ्यास प्रतिपल होता रहे। आज के बाबा के महावाक्य, बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। दो शब्द है, त्याग की हिम्मत और दूसरा तपस्या का उमंग। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो कि किस समय बाप माला सिमरन करते हैं अमृत वेले, तो जिस समय बाप माला सिमरन करते हैं उस समय आप सो तो नहीं जाते। शक्तियां तो सोने वाले को जगाने वाली है, तो खुद कैसे डैश खुद कैसे सोएंगे। त्याग की हिम्मत, क्या शब्द प्रयोग किया है, त्याग की हिम्मत। इस त्याग को समझना है, त्याग क्या है, कोई मजबूरी, कोई कष्ट। यदि त्याग मजबूरी है और यदि त्याग कष्ट है तो वो त्याग है ही नहीं। त्याग अर्थात जो अनावश्यक है वो छूट गया, त्याग अर्थात जो अब महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं रहा, जो अर्थहीन हो गया उसे हमने छोड़ दिया। त्याग अर्थात जिस बोझ को लिए जा रहे थे उठाए, उसको बाजू में रख दिया। त्याग कैसे हो, सहज। जो भीतर गुलामी थी उस गुलामी से हम मुक्त हो गए, वो है त्याग। अगर कोई व्यक्ति घर में कचरा भर के है और उस सारे कचरे को बाहर फेंकता है, फेंक देता है, तो क्या कहेगा, मैंने त्याग किया। कचरा भीतर था वो बाहर फेंक दिया, बोझ सिर पर था उसको हटा दिया, जो अनावश्यक चीज थी वो अब निकल गई, जो हमारे काम का नहीं रहा व्यर्थ हो गई। जब पता चल गया ये झूठ है उसको हटा दिया, तो इसका त्याग, इसको त्याग कहेंगे या क्या और कहेंगे, भाग्य। यदि कोई बाह्य त्याग करे और उसका अहंकार धर ले तो उसको क्या कहेंगे। उसी तरह क्या कहा, तपस्या का उमंग। तपस्या भी कोई कष्ट नहीं है, कोई सजा नहीं है, ये करो वो करो, सुबह उठो ये खाओ या वो खाओ। तपस्या कोई कठोरता नहीं है, कोई परिश्रम भी नहीं है। तपस्या क्या हो, सहजता। तपस्या प्रेम है, भीतर इतना प्रेम भर गया है, भीतर संपूर्णता इतनी जाग गई है कि वो हर चीज जो हमें भगवान से दूर करती है वो स्वतः छूट गई, हमने छोड़ा नहीं। तपस्या आनंद बन जाए, अनुशासन प्रेम बन जाए, तपस्या नृत्य बन जाए, हर संकल्प हर साधना उस नृत्य के सागर की एक लहर हो। अगर तपस्या जबरदस्ती कर रहे, बोझ के रूप में कर रहे, उठना पड़ता है, मुरली पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है पर पढ़नी पड़ती है, इतनी बड़ी वो भी 8-8 पेज की, वो देखकर ही चक्कर आने लगते हैं थोड़े थोड़े। लोग क्या कहेंगे? तपस्या वो अवस्था है जिसमें भूख, प्यास और नींद अपने आप छूट गई, क्योंकि भीतर से कुछ भर गया है। तपस्या आत्मा का नृत्य है, आत्मा नाच रही है, झूम रही है, कोई पीड़ा नहीं, कोई सजा नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, प्राप्ति का नशा है, खुशी है, खुमारी है, मस्ती है। बैठ रहो आराम से, जब तक पैर रेजिग्नेशन लेटर ना दे दे तब तक। पीड़ा हो रही है, देखो उस पीड़ा को, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है, सुन होते हैं न, उसको भी देखो। तरंगे हैं, एक दो मित्र थे बचपन में, घनिष्ठ मित्र, जैसे जैसे बड़े हुए एक की इच्छा थी कि मैं राजा बन जाऊं, सम्राट बनूं, उसका सारा ध्यान उसी ओर था और दूसरा तप से भरा हुआ था, वैराग से भरा हुआ था। दोनों ही सफल हुए, एक बहुत बड़ा राजा बन गया, एक सम्राट बन गया, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक थी, जिसने अपने विजय के पताके सब तरफ लहराए, और दूसरा वैराग के पथ पर निकल पड़ा, इतना आगे निकल पड़ा, इतना आगे निकल पड़ा कि उसने वस्त्र भी छोड़ दिए आगे जाके, दिगंबर मुनि बन गया। वैराग की पराकाष्ठा, कुछ भी नहीं चाहिए संसार से, और उसकी भी बहुत ख्याति हुई वैराग्य जगत में, इसकी भी ख्याति हुई संसार में। और जब राजा को पता चला कि मेरा वो बचपन का मित्र वापस अब घर लौट रहा है, तो राजा ने पूरे राज्य को सजा दिया, उसके स्वागत में दिवाली जैसे कि दिए लगाए, वो जहां से आने वाला था वहां पर ईरानी कालीन बिछा दी, ताकि मेरा जो मित्र है, इतना त्यागी, इतना तपस्वी, उसके प्रति धन्यवाद, उसके प्रति अहोभाव, उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन हो। और वो जो सन्यासी मित्र था, उसको लोगों ने आके बताया, तुम्हारा जो दोस्त है ना, देखो कैसा दिखावा कर रहा है अपने वैभव का, ये जो सारा हो रहा है ना, तुम्हें दिखाने की कोशिश है कि तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ रह गया। राजा का भाव ऐसा था नहीं, बीच के लोग ये करने वाले हमेशा से रहे हैं, इधर की खबर उधर और उधर की खबर इधर पहुंचाने वाले, वो उस इधर की खबर वहां पहुंचा देते हैं कि राजा ने तुमको नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है। वो सोचते हैं, अच्छा ये बात है, मैं भी कुछ कम नहीं, उसका वैभव है तो मेरा वैराग्य है, वो भी बिन बरसात, कोई बरसात का मौसम नहीं है, कालीन आता है, स्वागत होता है, राजा अपने सभी दरबारियों के साथ है, अपने पैरों में घुटने तक कीचड़ लगा लेता है और कीचड़ भरे पैरों से उस कालीन पर चलते हुए आता है। राजा को भी आश्चर्य होता है कि कीचड़ कहाँ से आया, कीचड़ तो है ही नहीं कहीं। जब राजमहल की सीढ़ियों पर दोनों चढ़ने लगते हैं तो राजा पूछता है अपने मित्र से कि एक बात मुझे समझ में नहीं आई है मित्र, कि ये तुमने ये कीचड़ जो लगाया ये क्या है। वो कहता है तुम अपने वैभव का प्रदर्शन कर सकते हो, तो क्या मैं अपने वैराग का प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो कहता है आखिर तुम भी वही निकले जो मैं निकला, ना तुम बदले ना मैं, हम वही हैं जहां थे वो सदियों पहले। मुझे लगा कि तुम तो बहुत कहीं और पहुंच गए किसी और जगत में, पर तुम तो जरा नहीं बदले, मैं भी नहीं बदला। ये वैभव मेरे दंभ का प्रतीक है और तुम्हारा वैराग तुम्हारे दंभ का प्रतीक है। मैंने इस ओर यात्रा की तो तुमने उस ओर यात्रा की, बाकी हम दोनों वही हैं जहां पहले थे। एक सीधा खड़ा है, दूसरा शीर्षासन कर रहा है बस। एक संसार के भोग में डूबा है तो दूसरे ने त्याग कर दिया, पर दोनों का ध्यान उसी संसार में है, उसी भोग में है। एक कहता है, एक तो फिर भी ठीक है, वो स्वीकार करता है कि मैं डूबा हूं भोगों में, पर दूसरा जिसने छोड़ा है, जिसने त्याग किया है, उसमें छोड़ने की भावना इतनी प्रबल है और उस छोड़ने का अहंकार इतना ज्यादा है कि इसमें और उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। छोड़ना उस मैं को है, उस अहंकार को है। बाहरी चीजों को पकड़ो या छोड़ो, पैसे पकड़ो या छोड़ो, वैभव पकड़ो या छोड़ो, वस्तुओं को पकड़ो या छोड़ो, इसका इतना महत्व नहीं है। महत्व किसका है? उस मैं को कितना पकड़ के रखा है। अमृत वेला उठ रहे हैं तो हो सकता है कोई 2 से 5 उठता है और वो 2 से 5 ही सबसे बड़े अहंकार का कारण है। कोई ब्रह्मचारी है तो वो ब्रह्मचर्य ही उसका दंभ बन गया है। और अध्यात्म के मार्ग में तो इतनी सूक्ष्म बाधाएं हैं, इतने सूक्ष्म अहंकार है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारा रोम रोम अहंकार से ही तो भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सेवा समाचार। वो सेवा का समाचार कम, स्वयं का समाचार ज्यादा है। मार्ग क्या है? संपूर्ण मौन धारण करना ही एकमात्र मार्ग हो सकता है। कुछ भी करने जाओ तो। इसलिए हरेक को अपनी तपस्या खुद निर्धारित करनी होगी। वन साइज फिट ऑल वाला फॉर्मूला यहां नहीं चलेगा। वन साइज फिट ऑल ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। हरेक को अपनी तपस्या टेलर्ड टू हिज ओन सर्कमस्टांसेस नेचर के अनुसार करनी होगी। नहीं तो हम जो कुछ करें, जो कुछ भी करेंगे, किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, कोई नया क्रिएटिव एक्शन करेंगे, वो केवल और केवल एक मूवमेंट की एक्साइटमेंट मात्र है। बस जस्ट वेव आई और चली गई, और क्या देकर गई? अल्पकाल का नाम, कोई बख्शीश, कोई सम्मान, कोई ट्रॉफी, कोई पारितोषिक। जिसने क्या किया? अध्यात्म में उन्नति नहीं की, अहंकार को और बढ़ा दिया। एक स्मृति बन गई जो जीवन भर हम सुनाते रहेंगे, फिर जिससे तप का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कहा बाबा ने? 2 शब्द। एक, त्याग का क्या? हिम्मत। हृदय जब परमात्मा से भर जाए तो उसे फिर और कुछ भी नहीं चाहिए। त्याग बलिदान नहीं, उत्सव हो, आनंद हो, बड़ा कुछ मिल गया इसकी खुशी हो। बड़ा लड्डू मिल गया तो ऐसा कहेंगे कि छोटा छोड़ दिया, त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, उत्सर्ग कर दिया। त्याग क्या है? उत्सव, आनंद, इतना भर गया, इतना भर गया कि जो छोटा था वो छूट गया, इतना सत्य भर गया कि जो झूठ था वो छूट गया, इतना विवेक भर गया कि जो संसार की सेंसिटिविटी थी जो हमें प्रभावित करती थी वो चली गई। तपस्या वो भी आनंद की ही अवस्था है। द डांसिंग एंजल्स, द डांसिंग मसीहाज, तो अपने तपस्या को फिर से एक बार अवलोकन करना है कि हम किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, किस त्याग का हमें दंभ है। घर में कचरा था वो फेंक दिया, क्या बख्शीश दिया जाएगा? तुम्हारे घर में कचरा था, दूसरे के घर में नहीं, खुद के घर का कचरा बाहर फेंक दिया, तो क्या सरकार तुमको कोई पारितोषिक देगी? भारत रत्न, बहुत अच्छा काम किया। त्याग सहज हो, तपस्या सहज हो। त्याग और तपस्या अगर टेंशन बन रही है तो रुकने की आवश्यकता है, और वो सहज तब बनेगी जब हम उसके विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ज्ञानमय प्रेममय समझ, कितना अच्छा शब्द है, ज्ञानमय प्रेममय समझ। अगर किसी व्यक्ति को कहो ये खाओ वो नहीं खाओ तो कितनी कितनी पीड़ा है और कितना कष्ट है उसमें, पर उसको जब समझ में आ जाए तो वो सहज हो जाएगा। यदि बाहर वाले आते हैं और उसको कहो कि 4 बजे तुमको उठना ही है, जबरदस्ती उठेंगे, एक दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन भाग जाएंगे यहां से, क्योंकि बिना समझ के किया है। उसी तरह किसी को कहो ब्रह्मचर्य धारण करो, कैसे होगा? प्रेममय ज्ञानमय समझ, ना दमन ना त्याग, दोनों ही नहीं। इसलिए अगर एक ट्रायंगल हम निकाले तो एक है राग और एक है विराग, ना त्याग ना त्याग, एक है राग अर्थात भोग, दूसरा है विराग अर्थात वैराग्य। न राग ना विराग, एक तीसरी अवस्था है जिसको कहते हैं वीतराग। न राग ना द्वेष, ये परे की अवस्था है, वीतराग। ये दोनों तो एक दूसरे का शीर्षासन है बस, क्योंकि दोनों का ध्यान उधर ही है, बीच में, व्यक्ति में, शरीर में, स्त्री में, पुरुष में, वो उसमें डूबा हुआ है और वो उससे दूर भागता है। एक जैन साध्वी प्रवचन के लिए कहीं गई और उसका जो कमरा दिया गया होटल का वो 30वीं मंजिल पर था। वहां पहुंचते ही उसने फोन किया नीचे मैनेजर को, जल्दी आओ, एक पुरुष मुझे देख रहा है। वो मैनेजर भाग के जाता है ऊपर, कहाँ है, कुछ तो नहीं दिख रहा है। वो कहता है ये लो दूरबीन और दूरबीन से देखो, वो दूर जो दूसरी मंजिल है ना, दूसरी बिल्डिंग, वहां से देख रहा है। ये कैसा ब्रह्मचर्य है? ये मेरे जो कपड़े हैं ना वो लगने नहीं चाहिए, तुम्हारे कपड़े मुझे लगने नहीं चाहिए, ये कैसा ब्रह्मचर्य है? तो न राग न विराग, वीत राग, उससे ऊपर उठ जाना, उसके साथ लड़ाई नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, उसके ऊपर उठ जाना, वो चीज एकदम छोटी हो जाए, हमें प्रभावित ना करे। तो आज की कविता क्या थी? अंतर तप, एक बाह्य तप है, एक अंतर तप है। बाह्य तप अर्थात बाहर का सारा कुछ जो दूसरों को दिखाई देता है, जिसमें लोग कहेंगे अरे बाप रे तुम तो बहुत ही बड़े दिखते हो, पर प्राय ऐसा कहने वाले, दिखने वाले उतने श्रेष्ठ होते नहीं। पैसे छोड़ दिया परंतु एक वॉलेट रखा है जिसमें चिल्लर रखे। साधु ने क्या किया? पैसा त्याग कर दिया परंतु एक बटुआ रखा है जिसमें चिल्लर रखे हुए वो नहीं छूटा है बस। सारा संसार के सौंदर्य प्रसादन सारे छोड़ दिया, राख भस्म कर लिए, पर छोटा सा आईना रखा है देखने के लिए कि राख ठीक से लगी है कि नहीं, प्रॉपर। इसलिए निरंतर एक दिव्य असंतोष भरा रहे जीवन में। अध्यात्म में किस चीज की आवश्यकता है? डिवाइन डिस्कंटेंट, कि ये जो कुछ है ये नहीं सत्य, इसके आगे सत्य है। अगर ये सोच लिया कि हाँ यही सब कुछ है यही, तो वहीं फंसे रह जाएंगे। और आगे और आगे और आगे, अभी तक जो किया है कुछ भी नहीं किया, ना ज्ञान में, ना योग में, ना धारणा में, सेवा में, जीरो मार्क्स खुद को। सेवा तो अभी चालू ही नहीं की है, ये भाषण जो किए ये बुद्धि और वाणी विलास था केवल, बस उसको तो सेवा में गिनती ही नहीं करनी है। पहली बात, जीरो। अगर कोई आके कहा कि आपको सुना तो बहुत फायदा हुआ, उसको कहना ये तुम्हारा भ्रम है, गेट लॉस्ट। ओम शांति।
ओम शांति। आज की कविता कहें या गद्य कहें, देखना पड़ेगा। गद्य, इसका शीर्षक है अंतर तप, 15 लाइन्स है। स्वांतः सुखाय से दया धर्म का मूल है कि जीवंतता ही अंतर तप। असीम आजादी से सार्थक स्वतंत्रता का विवेक भी है अंतर तप। परहित सरसी धर्म से निर्मल मनजन का आत्मिक अनुभव भी है अंतर तप। अपना पराया संपर्क संबंध नॉन बीके बीके की मानसिकता से आत्मा तक की यात्रा भी है अंतर तप। क्षीण होते जगत में अक्षुण्ण हो रहना भी है अंतर तप। संपर्क संबंध चर्चा परिचर्चा में निसंग रह स्वयं से संबंध रहना भी है अंतर तप। व्यक्ति व्यक्तिवाद, भौतिकता विस्तारवाद, पूंजी तथा साम्राज्यवाद का चेतना से झड़ जाना भी है अंतर तप। स्थूलता के मानसिक दबाव से मुक्ति भी है अंतर तप। स्वचिंतन स्वदर्शन स्वपरिवर्तन की निरंतर जागृति भी है अंतर तप। चेतन अवचेतन की सहजता सरलता विनम्रता तक की यात्रा भी है अंतर तप। एकांत से ध्यान, ध्यान से अध्यात्म, अध्यात्म से राजयोग, राजयोग से मौन, मौन से स्वयं, और स्वयं से परम तक की यात्रा भी है अंतर तप। भाव जगत, वैचारिक लोक अथवा कार्मिक सिद्धांतों की चैतन्य सार्थकता भी है अंतर तप। सब एक में है, एक में सब है, यही है अंतर तप। लास्ट है अंततः एक बाप दूसरा न कोई का आत्मीकरण, यही है केवल अंतर तप। ओम शांति।
मन मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। मशाले तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, पाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का ना कर अनादर,
सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार।
न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम से दुनिया बदलेगी,
तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी।
उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा,
अमृत वेले की है पुकार।
ना रुक ना झुक हो जा निराधार, बढ़ चल
बढ़